नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के शुरू किए गए अवसंरचना विकास कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली के पंजपुर में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु में 5,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो नियमित एक्सप्रेस और एक यात्री रेलगाड़ी सहित 5 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक विकसित तमिलनाडु बनाना है, इससे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।
These projects are about infrastructure for clean energy, petroleum-related manufacturing, highways, railways, and rural roads. They will boost energy access connectivity and create thousands of jobs for the youth of Tamil Nadu.
नई रेल सेवाओं की शुरुआत पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये रेल सेवाएं संपर्क, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए अवसरों को मजबूत करेगी। इससे पहले केरलम के कोची में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट हमें आत्मनिर्भरता के महत्व का बोध कराता है।
एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। लोकसभा ने अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को आज ध्वनिमत से खारिज कर दिया। प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की निष्ठा पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि ये संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए खेदजनक है। पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 12वां दिन है। पिछले कुछ घंटों में अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने 16 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि हमले में कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अवसंरचना और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया गया। भारत ने आज दोहराया कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डालना या किसी भी तरह से नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में थाई जहाज मयूरे नारिक पर हुए हमले के संबंध में जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में वाणिज्यिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाए जाने पर भारत गहरा खेद व्यक्त करता है। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि वहां फंसे 500 से अधिक भारतीय आज कतर एयरवेज की उड़ानों से नई दिल्ली और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हो गए हैं। दूतावास ने बताया कि कतर एयरवेज कल भारत के लिए 2 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें 1 नई दिल्ली और 1 मुंबई के लिए होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है और संपूर्ण घरेलू एलपीजी आपूर्ति घरों के उपभोक्ताओं के लिए भेजी जा रही है। सुश्री शर्मा ने कहा कि एलपीजी की घरेलू आपूर्ति की डिलीवरी में लगभग 2.5 दिन का समय लगता है और लोगों से आग्रह किया गया है कि वे घबराकर बुकिंग न करें, क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।